اللہ کے خاص بندے۔
श्रोताओ, कार्यक्रम अल्लाह के खास बंदे की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में हम हजरत अली अलैहिस्सलाम की शासन शैली के बारे में चर्चा करेंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी के शासनकाल पर एक नजर डाली थी। आपको बताया था कि लोगों की अप्रसन्नता के बाद उनके भीतर विद्रोह पैदा हुआ और उन्होंने उस्मान गनी की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास आए। ये लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बैत करना चाहते थे, किंतु इमाम अली अलैहिस्सलाम इसके लिए तैयार नहीं हुए। लोगों की ओर से हज़रत अली अलैहिस्सलाम से बैत करने पर लगातार दबाव के बारे में वे कहते हैं कि तुमने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, मैंने उसे पीछे हटाया, तो तुम फिर उस और आगे बढ़ने लगे। बाद में तुम इस तरह टूट पड़े जैसे प्यासा ऊंट पानी पर झपटता है। तुम सब ने मुझको इस तरह से घेर लिया कि मेरे जूते भी पैरों से निकल गए और मेरी अबा कांधे से गिर गई। मुझसे बयात करने के लिए लोगों में इतनी व्याकुलता बढ़ गई थी कि कम आयु वाले प्रसन्न थे और बड़े लोग हाँपते कांपते हुए मेरी ओर बढ़ रहे थे।
बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि वे लोग जो इतनी तेज़ी से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ रहे थे, जब उन्होंने ये देखा कि वे तो केवल न्याय स्थापित करना चाहते हैं और इस मार्ग में आने वाली हर बाधा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे ही लोगों ने हज़रत अली का विरोध आरम्भ कर दिया। जब उन्होंने देखा कि हज़रत अली समाज में भेदभाव दूर करने, न्याय स्थापित करने और राजकोष या बैतुलमाल से लूटी गई धन संपत्ति को वापस लाने में बहुत गंभीर हैं, तो फिर बहुत से बैत करने वाले इमाम अली के विरोधी हो गए। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो इमाम अली के हितैषी बनकर उनसे कहा करते थे कि आप पहले कुछ नरमी से काम लें और उनकी अनदेखी करें, बाद में उनके बारे में कुछ कीजिएगा।
ऐसे लोगों के जवाब में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भेदभाव और अत्याचार का समर्थन करूं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं न्याय का राजनीतिकरण करूं? फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ईश्वर की सौगंध, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं भेदभाव और जातिवाद का समर्थन नहीं कर सकता। मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, इस समय जो कुछ मेरे अधिकार में है, यदि ये सारा माल मेरा होता और मैं ये चाहता कि इसे लोगों के बीच बांट दूं, तब भी मैं भेदभाव से काम नहीं लेता। फिर उन्होंने कहा, ये माल तो मेरा है ही नहीं, ये तो ईश्वर का है। ऐसे में इसके बांटने में भेदभाव के बारे में सोचना भी गलत है। इसका बंटवारा न्याय के आधार पर होना चाहिए।
हज़रत अली ने दुष्प्रचार और विरोध को अनदेखा करते हुए अयोग्य लोगों को उनके पदों से हटाया और योग्य लोगों को उनके स्थान पर नियुक्त किया। इस तरह से उन्होंने सत्ता का संचालन आरंभ किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता को किसी हथकंडे के रूप में न देखो, बल्कि उसे एक अमानत की तरह समझो और एक अच्छे अमानतदार की तरह उसकी रक्षा करो। आपने कहा कि किसी भी भ्रष्ट या अत्याचारी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी न सौंपो, साधारण जीवन गुजारो, आलोचकों की बातों को सुनो और चापलूस लोगों से दूर रहो, आम लोगों से संपर्क में रहो और लोगों से मिलते जुलते रहो। हर फैसला करते समय न्याय को दृष्टिगत रखो। फैसला करते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करो, हमेशा न्याय का साथ दो। यदि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध भड़काया जाए तो उसका मुकाबला करो और युद्ध के मैदान से कभी न भागो। जितने की स्थिति में कभी भी अन्याय न करो। लोगों के साथ मानवता के आधार पर व्यवहार करो। भागते हुए लोगों का पीछा न करो। युद्ध कभी भी आरंभ न करो, लेकिन अगर युद्ध तुम पर थोप दिया जाए तो फिर पीछे न हटो। हमेशा न्याय से काम लो।
ये वो बातें थीं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नीतियों का भाग थीं। इन्हीं नीतियों के कारण वे लोग जिन्होंने खूब पैसा कमा लिया था अब स्वयं को संकट में देख रहे थे। न्याय के मार्ग पर चलने की स्थिति में जमा पूंजी हाथ से निकल रही थी। ऐसे में उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम से मिलकर ये कहना चाहा कि वे अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करें। जब उन्होंने देखा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम किसी भी स्थिति में अपनी न्यायपूर्ण नीतियां और इस्लामी शिक्षाओं के क्रियान्वयन से पीछे नहीं हट रहे हैं तो फिर उन लोगों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिए।
इस प्रकार बहुत से ऐसे लोग हजरत अली के विरुद्ध एकजुट हो गए जो उनकी इस्लामी नीतियों के विरोधी थे। ऐसे लोगों का ये मानना था कि हजरत अली उनको कुछ छूट दें या फिर अनदेखा कर दें, किंतु इमाम अली ने ऐसा नहीं किया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन है जिसमें आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सत्ता काल के बारे में एक भविष्यवाणी की थी।
आपने कहा था कि ईश्वर की सौगंध अली कासितीन, नाकेसीन और मारेकिन के विरुद्ध युद्ध करेंगे, अर्थात हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने सत्ताकाल में वर्चस्ववादियों, बैत तोड़ने वालों और भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। विशेष बात यह है कि इन तीनों गुटों से लड़ना इसलिए बहुत कठिन था कि वे सब के सब धर्म का लबादा ओढ़े हुए थे और लोगों के बीच स्वयं को अच्छा दिखाते थे जबकि अंदर से बुरे थे।
इस संबंध में पहले हम जंगे जमल या जमल युद्ध का उल्लेख करेंगे। ये वो युद्ध था जिसमें पैगंबर इस्लाम की पत्नी आयशा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हजरत उमर और अबू बकर के काल में उन्हें बहुत मान सम्मान प्राप्त था, किंतु उस्मान गनी के काल में उनका सम्मान कम होता गया। यही वजह है कि उस्मान गनी और आयशा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि उस्मान गनी के बारे में हजरत आयशा ने कहा कि इस नासमझ बूढ़े को मार दो जो काफिर हो गया है। उन्होंने इसी प्रकार कई कबीलों को खत लिखकर उन्हें उस्मान गनी के विरुद्ध उकसाया। जब उन्होंने उस्मान गनी की हत्या की खबर सुनी तो कहा कि वे अपने परिवार के लिए बदनामी का कारण बने।
इसके बाद जैसे ही उन्हें हजरत अली अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने की सूचना मिली तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब उन्होंने उस्मान गनी की हत्यारों से बदला लेने की मांग शुरू कर दी। वास्तव में हजरत आयशा को आशा थी कि खिलाफत तलहा और जुबैर के हाथ में आएगी, किंतु जब उन्होंने सुना कि अली खलीफा बन गए तो फिर उन्होंने उस्मान गनी के हत्यारों से बदला लेने का अभियान आरम्भ कर दिया। तला और जुबैर ये बात भली भांति जानते थे कि खिलाफत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता ये है कि हजरत आयशा की सामाजिक स्थिति का लाभ उठाते हुए लोगों को हजरत अली के विरुद्ध उकसाया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। इस बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम का कहना था कि उन्होंने विद्रोह किया और ऐसे लोगों की सेना बनाकर सामने आए जिन्होंने मेरी बैत की थी और वे मेरी बात मानते थे।
जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि जमल की फौज बसरे की तरफ बढ़ रही है तो उन्होंने अपने गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ को खत लिखा था। इस खत में हजरत अली ने लिखा था कि तुम उन लोगों से बात करना और उन्हें समझाना कि वे युद्ध न भड़काएं। उन्होंने अली के साथ जो बैत की है उसे न तोड़ें। हालांकि जमल की फौज ने इमाम अली के गवर्नर की कोई बात नहीं मानी। इसका कारण ये था कि वे युद्ध करने, लुटपाट करने और सत्ता हासिल करने के लिए ही निकले थे। ये सेना बसरे की ओर बढ़ने लगी। जब हजरत अली के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने ये देखा कि अब युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।
जमल की सेना ने जब ये देखा कि बसरे की सेना मजबूत है और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने बसरे की सेना से मांग की कि युद्ध न किया जाए और हजरत अली के मदीने से यहाँ पहुँचने की प्रतीक्षा की जाए, फिर अली जो फैसला करेंगे वैसा ही किया जाएगा। जमल की सेना ने यह मांग की कि जब तक अली नहीं पहुंच जाते उस समय तक उन्हें बसरे के भीतर जाने की अनुमति दी जाए। انہوں نے وچن دیا کہ بسرے کے بھیتر پہنچ کر وہ لوگ گورنر کے کاریالے، جنکوش یا خزانے اور مسجد کے نکٹ نہیں جائیں گے۔ ادھر بسرے کے گورنر عثمان بن حنیف نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ طلحہ اور زبیر جیسے پیغمبر اسلام کے ساتھی وشواس گھات بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ یہی ہوا اور جمل کی سینا نے بسرے میں پہنچتے ہی مار کاٹ شروع کر دی۔ مسجد میں نماز کے دوران لوگوں کو مارا پیٹا، عثمان بن حنیف کی ہتیا کر کے ان کا گلا کاٹ دیا، خزانے کو لوٹا اور اس پرکار سے نگر پر اپنا کنٹرول بنا لیا۔
حضرت علی علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ جمل کی سینا نے بسرے پر کنٹرول کر لیا ہے تو انہوں نے اپنے سینکوں کے ساتھ بسرے کے نکٹ پڑاؤ ڈالا۔ جیسے ہی یہ بات جمل کی سینا کو پتہ چلی، اس نے وہاں پر حملہ کر دیا۔ اب ایسے میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے چپ بیٹھنا بہت کٹھن ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے ان وشواس گھاتیوں پر حملہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں پورا معاملہ پلٹ گیا۔ جنہوں نے علی کی سینا پر حملہ کیا تھا، ان کو علی کے سینکوں نے دھول چٹا دی۔
اس یدھ میں ہزاروں لوگ دونوں طرف سے مارے گئے۔ یدھ میں طلحہ اور زبیر بھی مارے گئے۔ حضرت علی نے پورے سمان کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینے بھیجوا دیا۔ اس پرکار حضرت علی علیہ السلام کے ورد پہلا شڈینتر وفل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی مدینے واپس نہیں گئے بلکہ وہ کوفہ چلے گئے۔